जय माँ। सावित्री यज्ञ में हम लोग अज्ञान से मुक्ति ये वाला सर्ग पढ़ रहे हैं, यानी ज्ञान। ज्ञान क्या होता है योग की भाषा में? निश्चित रूप से वो किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान एक चीज़ है और ज्ञान के चक्षु खुलना दूसरी बात है। तो ज्ञान के चक्षु वो उच्च चेतना के प्रवेश से, उच्च चेतना के स्पर्श से खुलते हैं और उनकी एक एक लेवल के अधिष्ठात्री देवी होती हैं। तो इंट्यूशन का यहाँ पर वर्णन है कि कैसे इंट्यूटिव माइंड पर अशुपति पहुँच गए हैं और इंट्यूशन की जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे उनके झोली में भरती जा रही हैं और उनके ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं। तो जब ये ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो क्या क्या अनुभव होते हैं, किस किस तरह का ज्ञान सामने आता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज हम लोग केवल सेल्फ रियलाइजेशन बहुत वेगली कि हमने सेल्फ का अनुभव कर लिया या कोई ज्योति देखी, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक व्यापक भूमि पर ज्ञान का विस्तार होता है। यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज्ञान का विस्तार भी होता है जो हमको वह सब कुछ दिखाने लगता है जो साधारणतया हम लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि ये केवल एक प्रकाश एक अतीन्द्रिय अवस्था में नहीं है। वो प्रकाश जब एक बार ऋषि के भूमि पर आ जाता है, उसके मन की भूमि पर, तो वो सब दिखाने लगता है जो छिपा हुआ है। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आज पेज 39 पेज 39 वहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। बीच में है कहीं पर, ये पेज के लगभग बीच में। ए ट्रैवलर बिटवीन समिट एंड एबिस, शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स, द व्यूलेस डीप्स। शी कौन है? ये इंट्यूशन की जो देवी है, जो पहले बात हुई है कि इला मही सरस्वती शर्मा भी कहा गया है, तो वो इंट्यूशन की देवी हैं। श्री अरविंद क्यों नाम नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनके अलग अलग स्क्रिप्चर्स में हम देखेंगे तो अलग अलग नाम हैं, किंतु मूल चीज़ है कि वह कैसे कार्य करती हैं। तो जब इंट्यूशन की देवी प्रसन्न हो जाती हैं या जागृत हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? जॉइंस दी हाइट्स एंड दी एबिस, यानी वो केवल ये नहीं दिखाती हैं कि दिव्य तत्व देवत्व, लेकिन अंधकार में भी जो कुछ छिपा है, अंधकार के गर्भ में भी जो कुछ छिपा है संभावनाओं के रूप में, वो सब कुछ देखने लगते हैं हम लोग। शी जॉइंड द डिस्टेंट एंड्स द व्यूलेस डीप्स और स्ट्रीक्ड अलोंग द रोड्स ऑफ हेवन एंड हेल, परस्यूइंग ऑल नॉलेज लाइक ए क्वेस्टिंग हाउंड। तो ये हाउंड तो एक शिकारी कुत्ते को बोलते हैं। तो शर्मा ये नाम जो है उन देवी का, उनको कहा भी ऐसे गया है हाउंड ऑफ हेवन। इस पर एक पूरी कविता भी है फ्रांसिस थॉमस की, जिसको श्री अरविंद ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो जैसे एक शिकारी कुत्ता छिपा है, जो मान लीजिए कोई जंगल में किसी गुफा में उसमें छिपा हो, हम लोग अपने इसमें भी टेररिस्ट को हाइड आउट से ढूंढने में भी मदद करता है, तो कहाँ छिपा है, कौन क्या, उन शक्तियों को वो खोजने में बहुत एक्सपर्ट है, सेंस कर लेता है। तो वो देवी के प्रभाव से हमारे अंदर वो चेतना या वो इंद्रियां जाग जाती हैं, वो ज्ञान का चक्षु खुल जाता है कि वो चीज़ें जो छिपी हुई हैं हेल हेवन महाअंधकार में और प्रकाश के अंदर, परस्यूइंग ऑल नॉलेज लाइक ए क्वेस्टिंग हाउंड। तो ऑल नॉलेज यह इम्पॉर्टेंट है, केवल आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के साथ साथ संसार का ज्ञान दोनों जुड़ा हुआ है। तो संसार और आत्मज्ञान को अगर हम जोड़ना चाहें तो ये मैं हिंदी की भाषा में दो शब्द हैं, एक है सार और एक है संसार। तो जो सार से जुड़ करके सृष्टि में विस्तार में जाता है वो संसार है। तो सार को केवल जानना काफ़ी नहीं है, सार के साथ साथ संसार, तो दोनों का ज्ञान इनकी कृपा से मिलता है, इनके प्रकाश से। ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक। अब ये हिडन विजडम क्या है? हम लोग केवल पढ़ते हैं इसको कि कई बार ये प्रश्न भी उठता है, जैसे आप रामचरितमानस से, रामचरितमानस में आप देखें कि शिव पार्वती का संवाद हो रहा है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि व्यास ऋषि कैसे लिख सकते हैं महाभारत में गीता, अगर श्री कृष्ण और संजय का संवाद, अर्जुन का संवाद हो रहा है तो व्यास ऋषि को कैसे मालूम कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हम सावित्री में भी ये देखते हैं, श्री अरविंद बता रहे हैं कि अशुपति ने ये बोला। अब एक तरीका इसको बताने का ये है कि ये फिगरेटिव है जो संवाद हो रहा है उसका, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच इस सेंस में कि अगर हम ये कहते हैं केवल ये एक प्रकार से एक आभास है, तो मतलब कि वो तो फिर जो कवि है या जो रचनाकार है उसने अपने भावों को उसमें डाल दिया। लेकिन यहाँ पर वो सत्य जो है, जो शब्द में बंधा नहीं है, उस सत्य को पकड़ करके वो शब्दों का मूर्त रूप दे रहे हैं। ये अंतर है। जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण के सत्य को कोई एक प्रकार की मूर्ति बनाता है, कोई दूसरे प्रकार की मूर्ति बनाता है, तो मूल चीज ये नहीं है कि वो किस भाषा में बोल रहा है कि अच्छा देवताओं का रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन ट्रूथ, देवता आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं ना, तो वो इंट्यूशन हमको ये बता देती है कि देवताओं का आपस में क्या संवाद हो रहा है, ये हम पुराणों में देखते हैं। तो संवाद, अब प्रश्न उठता है किस भाषा में हो रहा है। तो यहाँ बात ये नहीं कि किस भाषा में हो रहा है, वो चेतना की एक भूमि पर हो रहा है जहाँ स्पंदनों के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं कि ये आपस में देवताओं का क्या कन्वर्सेशन चल रहा होगा। माता जी तो बहुत कॉमनली ये बताती हैं कि वह देवता आया, उसने मुझसे ये बात की, तो असुरों की भी बात, तो ये सारे जो छिपे हुए हैं सत्य, ये अशुपति के सामने प्रकट हो रहे हैं। ए रिपोर्टर एंड स्क्राइब ऑफ हिडन विजडम टॉक, यानी जो देवताओं ने निर्णय लिया है वो ज्ञात हो जा रहा है। कि जैसे अभी पाकिस्तान का ही जैसे हो रहा है, चल रहा है, तो अगर कोई इंट्यूशन के प्रति ओपन हो, अब तो खैर ये सर्वविदित हो रहा है, लेकिन 50 वर्ष पहले देवताओं ने निर्णय ले लिया है कि पाकिस्तान को ख़त्म होना है। ये इलियन में यही आता है ना कि देवता बैठ करके निर्णय लेते हैं कि अब ट्रॉय को गिरना है। और वो सत्य को जो ऋषि होते हैं, होमर अपने आप में एक ऋषि हैं और श्री अरविंद ने इलियन में तो है ही हैं, तो वो उस सत्य को जान लेते हैं, भांपते नहीं हैं, जानते हैं, दोनों में अंतर है, अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, और उसको फिर वो भाषा में प्रकट कर सकते हैं। वो भाषा इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इसमें ये नहीं कि कौन सी भाषा में, वो अमृतदा की वो कहानी में कई बार बता भी चुका हूँ कि अमृतदा से किसी ने कहा कि अमृत मालूम है देव भाषा तो संस्कृत ही है, कहते हैं हाँ लेकिन तुमको पूरा सच नहीं मालूम है इसका। क्या है पूरा सच, कहते हैं जब देवता लोग मनुष्य से बात करते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं, तो फिर आपस में बात करते हैं तो तमिल में बात करते हैं। स्पंदन है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। श्री अरविंद बताते हैं कि लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो वो सब जब इंट्यूशन जाग जाता है तो ये पता चल जाता है कि देवताओं ने जो निर्णय ले लिया है उसका तो ये फिर होगा ही होगा। हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ सेलेस्टियल स्पीच पास्ट थ्रू द मास्क्ड ऑफिस ऑफ द ऑकल्ट माइंड ट्रांसमिटिंग गेव टू प्रॉफिट एंड टू सीयर द इंस्पायर्ड बॉडी ऑफ द मिस्टिक ट्रूथ। तो इंट्यूशन कैसे काम करती है, तो वो पहले जो ह्यूमन माइंड है वो एक मास्क की तरह है, मास्क के पीछे से, आपने ये देखा होगा ना पुराने समय में जब प्लेज होते थे, क्या ड्रामा हो रहा है, तो पीछे से कोई आपको बताने के लिए होता था कि आपकी स्पीच ये है, आपको ये बोलना है। कभी कभी अगर आप भूल जाते थे तो बहुत केओस होता था। तो ये देखिए दो लेयर पर हो रहा है, एक है जो देवता जो देवी हैं इंट्यूशन की, वो जो वहाँ पर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो आपको ट्रांसमिट कर रही है थ्रू द मास्क माइंड। और जब कोई ग्रहणशील हो जाता है, इवन नॉर्मली बताती हैं, लेकिन कई बार हम लोग क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने मन में उलझे होते हैं तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो सीयर है, जो ऋषि है, उसको वो एक इंस्पायर्ड ट्रूथ के रूप में आ जाता है और वो उसको बोल पड़ता है, क्योंकि वो कुछ मिनटों में जो कहेगा वो शायद कई डिकेट्स में, सेंचुरीज में कई बार नहीं पता चलता। ये तो श्री अरविंद की वाणी को कई बार लोग कहते हैं सुपर माइंड कहाँ दिख रहा है, एक्शन कैसे दिख रहा है, तो वैसे तो दिख रहा है, अगर आंखें होंगी तो दिखेगा, अब अंधे को तो हम कुछ नहीं दिखा सकते लेकिन दूसरी बात यह है कि जो शेरविन ने लिखा है वो कुछ सौ वर्ष आगे की चीज देख ली है, तो वो चीज हमको देखने में, या तो हम अपनी चेतना में इतना आगे बढ़ जाएं कि 50 साल कम से कम आगे बढ़ जाएं तो शायद हम लोग कुछ पकड़ सकें, नहीं तो जैसे जैसे मनुष्य आगे जाएगा वैसे वैसे वो देखने लगेगा। तो यहां पर इसकी बात हो रही है ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग व्हाट दी सेलेस्टियल स्पीच, जो देवता बोलना चाह रहे हैं वो आपके मुख से निकल पड़ता है। हर शाइनिंग मिनट्स ऑफ सेलेस्टियल स्पीच पास्ड थ्रू द मास्ट ऑफिस ऑफ द ऑकल्ट माइंड, अभी इनर माइंड में आता है, इनर माइंड से वो आउटर माइंड में आएगा तो कई बार उसमें भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि रीजन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो रीजन उसको रीजन वाइज देखना प्रारंभ करता है तो उसको खो देता है। द इंस्पायर्ड बॉडी ऑफ द मिस्टिक ट्रूथ, मिस्टिक ट्रूथ हमेशा इंस्पायर्ड होता है, वो लॉजिकल रैशनल एनालिसिस से नहीं प्राप्त किया जाता है। ए रिकॉर्डर ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द गॉड्स, स्पोक्समैन ऑफ द साइलेंट सींग्स ऑफ द सुप्रीम, शी ब्रॉट इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन। तो यहां पर है कि रिकॉर्डर ऑफ द इंक्वायरी, जो देवता, अब देखिए पूरा लेयर एकदम एक सुपर साइंस की तरह श्री अरविंद एक्सप्लेन कर रहे हैं। चेतना एक स्तर है जहां गॉड्स या गॉड लाइक एनर्जी, पर गॉड्स इज द राइट वर्ड, वो आपस में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो वो डिसाइड कर रहे हैं तो वो होगा, आप उसको नहीं टाल सकते हैं, मतलब अनलेस गॉड के ऊपर, गॉड हिमसेल्फ, तो वो वहां पर कोई स्पंदन होता है वो आता है। तो ये जो इंट्यूशन के लेवल पर वो सब डॉक्यूमेंट हो गया, ओवर माइंड पर निर्णय हुआ और इंट्यूशन ने उसको कैच किया, और उसको कैच करने के बाद उसने जो कुछ भगवान ने देखा और इस लेवल से लेवल आ रहा है तो चुपचाप उसने वो सब देख लिया। साइलेंट सींग्स ऑफ द सुप्रीम, शी ब्रॉट इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन। तो वो मनुष्यों के मुख से वो वाणी निकली जो वास्तव में वो शायद मनुष्य खुद नहीं जानता कि उसने क्या कह दिया। हम लोग देखते हैं ना कभी कभी लोग आजकल पॉलिटिकल उसमें भी ऐसी बात कह देते हैं, और आप देखें कि जब विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्पीच देता था तो श्री अरविंद अगले दिन वो सुनते थे, कभी कभी साथ साथ सुनते थे, ट्रांसमिट हो रेडियो से जब आता था, और श्री अरविंद कहते थे कि हाँ इसने ठीक से रिसीव किया या कहाँ उसने त्रुटि कर दी। तो कई बार लोग जब बहुत क्रेडिट देते हैं कि भाई इस पॉलिटिशियन ने ये कहा, तो वास्तव में क्रेडिट ये है कि वो रिसेप्टिव है, पर बोलने वाला कोई और है, उसके मुख को उसने उपयोग में ला करके कह दिया, और वो किसी के भी मुख को यूज कर सकता है, इवन एडवर्सरी के मुख को। यही श्री कृष्ण श्री अरविंद को बताते हैं जब वो जेल में है उस समय, कि मैं ही इस तरफ के वकील से भी बोलूंगा, उधर के वकील से भी, और जज के मुख से भी फैसला सुनाऊंगा। शी ब्रॉट इमॉर्टल वर्ड्स टू मॉर्टल मैन, क्लासिक एग्जाम्पल चित्रंजन दास का है, जो कहते हैं कि बहुत जब ये कॉन्ट्रोवर्सी समाप्त हो जाएगी, ये व्यक्ति भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये जो खड़ा हुआ है कोर्ट में श्री अरविंद के बारे में, वो हिस्ट्री के कोर्ट में खड़ा है, और लॉन्ग आफ्टर जब ये बात अलीपुर बॉम्ब केस चला जाएगा और वो रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन इसके जो शब्द हैं वो सात समुंदर पार गूंजेंगे। अब कोई पूछेगी चित्रंजन दास को कि आपको ये बात कैसे पता चली थी, वो तो कही गई और वो सच है और वो उनके मुख से निकली, कहलवाई गई। अबव द रीजन्स ब्रिलियंट स्लेंडर कर्व, अब ये जो वाणी है वो कहाँ से आ रही है, ये इसी को आकाशवाणी कहा गया, वो कहाँ से आ रही है, रीजन के ऊपर। तो उसको आप रीजन से नहीं समझ सकते हो कि ये कैसे संभव है। कभी कभी कई बार लोग बोलते हैं कि रीजन से कैसे बता, रीजन से नहीं हो सकता है, रीजन से आप नहीं बता पाओ, क्योंकि उस समय रीजन का डेटा जो है वो बाहरी सेंसेस का डेटा है, उसके बाहरी सेंसेस के हिसाब से नहीं पता चलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अखंड भारत होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये सब उस विजन में सब फोरसीन है, देखा जा चुका है, उसका हल ढूंढ दिया गया है, लेकिन मनुष्य को उसको डिस्कवर करना है। जैसे माने एक बार कैंसर के बारे में बोला कि सूक्ष्म भूमि पर कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है, मनुष्य को उसको डिस्कवर करना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे ही काम करती हैं। अबव द रीजन्स ब्रिलियंट स्लेंडर कर्व released like radiant air, dimming a moon, broad spaces of a vision without line or limit swam into his spirit skin. Ab dekhi Sri Aurobindo ki image dekhi. Above the reasons, brilliant slender cup. रीजन जो है ना वो मनुष्य के अंधकार में लगता है कि यही एक लैंप है, हल्का जल रहा है, तो एक रीजन को ऐसे देखिए कि लैंप्स की जो लाइट है मरीन ड्राइव पर या पांडिचेरी के उसमें लाइट जल रही है, लेकिन इस लाइट के ऊपर क्या है, मून. अब वो मून तो मून का तो ये सारी लाइट नहीं मुकाबला कर सकती है. अब जो उसके एटमोसफियर में है, अगर जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है तो आसपास आपको दिखता है ना एक ल्यूमिनस सा एक ऑरा, तो मान लीजिए उस ल्यूमिनोसिटी से, उस प्रकाश से सारा आकाश और हवा वो प्रकाशित हो जाए, तो वो जो नीचे की लाइट है उसको कौन देखेगा, उसकी क्या महत्व रह जाएगा. इसका जो जॉय आप देख रहे हो, तो रीजन को कंपेयर किया है कि लाइक ब्रिलियंट, लेकिन वो एक लोअर लाइट है, इसके ऊपर है. ऊपर क्या है, मिस्टिक मून जो एक स्पिरिचुअल माइंड का प्रतीक है, और उसके चारों तरफ जो एटमोसफियर है वो प्रकाश में हो जाए तो फिर क्या दिखता है, रिलीज लाइक रेडियंट एयर डिमिंग ए मून, जिसके सामने अगर चंद्रमा का भी प्रकाश फीका पड़ने लगे. ब्रॉड स्पेसेस ऑफ ए विजन विदाउट लाइन और लिमिट स्वैम इनटू टू स्पिरिट स्कैन, तो ऐसे विजन्स और ऐसे चित्र देखने लगे अशुपति जो अचानक उनके परिधि में आ गए, वो चीजें जो दिखती नहीं है. Oceans of being met his voyaging soul. Oceans of being क्या है, वो विशाल सत्ताएं. देवता तो कॉस्मिक होते हैं ना, तो इसीलिए उनको कई बार, जैसे अब हमारे यहाँ दश महाविद्या है तो कॉस्मिक पावर्स हैं, वो एक साथ कई जगहों पर कार्यरत होती हैं. तो बाकी देवताओं का तो हम जानते हैं, इंद्र केवल एक स्थान पर नहीं है, कई स्थानों पर वो काम करते हैं. जहाँ भी एटम के अंदर भी कार्य होगा उनका, उस अपने लोक में तो होगा ही होगा, और बाकी कई लोगों के साथ एक साथ, तो ओशियंस ऑफ बीइंग बहुत विशाल है उनका व्यक्तित्व, उसमें अनेकों अनेकों घटनाएं एक साथ हो रही हैं. कॉलिंग टू इन्फिनिट डिस्कवरी, तो अब अशुपति इन सब प्रकार की जो उनको रिविलेशन हो रही, खोज हो रही है, उसके वो सब उनको दृश्य हो रहा है, दर्शन हो रहा है. Timeless domains of joy and absolute power stretched out, surrounded by the eternal hush. The ways that lead to endless happiness ran like dream smiles through meditating vasts. तो जैसे अब यहाँ पे पूरी रूपांतरण की प्रोसेस है, जो न्यू बीइंग होगा कैसा होगा, तो उसका मन कैसा है अशुपति का इस समय, वो ऋषि हैं स्वयं देखा जाए तो शिवन, तो उनके मन के अंदर क्या चेंज आ रहा है. यहाँ उनके मन के अंदर जो चेंज है, मानव हृदय के अंदर ये चेंज आ रहा है कि एक टाइमलेस जॉय, जो किसी भी इस समय की, समय के अनुसार जो परिस्थिति और अवस्था से जो जॉय होता है, उसके अन्यत्र, उससे अलग वह जॉय और वह शक्ति, एब्सोल्यूट पावर, अब धीरे धीरे उसका स्पर्श उनको मिल रहा है. The ways that lead to endless happiness, और ऐसी अवस्थाएं जिसमें व्यक्ति सदैव प्रसन्न रह सके, ran like dream smiles through meditating vast. ये तो वर्णनातीत है, इसका क्या कहा जा सकता है, इसको तो पता नहीं, चित्रण भी किया जा सकता है. Dream smiles मतलब एक हल्का सा, जैसे ये मार्ग लेने से आप हैप्पीनेस का रास्ता है, ये भी हैप्पीनेस. हैप्पीनेस यहाँ कोई साधारण हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही है, टाइमलेस जॉय की बात हो रही है. इसीलिए कहते हैं कि भगवान को ओबे करना सबसे कठिन लेकिन सबसे स्ट्रेट रास्ता है, क्योंकि उनको ठीक पता है कि क्या चीज़ होगी जिससे हमको वास्तव में प्रसन्नता मिलेगी. वो एक कहानी है यहाँ पर, वो मुझे खुद ही बता रही थी, नाम भूल रहा हूँ, खैर नाम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अभी भी वो जीवित है. तो बता रही थी कि जब वो आश्रम स्कूल से पढ़ी, फिर उनका यहाँ रहने का मन किया, तो रहीं दो साल रहीं, तो फिर उनका मन किया नहीं मैं बाहर जाके दुनिया को अनुभव करूँ, तो माता जी के पास गई बताने के लिए कि मैं जा रही, मैंने निर्णय लिया है कि आई एम गोइंग. तो माँ ने उनको वेट करने को कहा और बाकी सबका हो गया तब माँ ने उनको बुलाया, एक ब्लेसिंग पैकेट दिया। उसकी तो स्टोरी अलग है, चंपक लाल जी ने पूछा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये आश्रम में रहते हैं तो एक प्रकार की लाइन ऑफ एडवांस है, बाहर के जीवन में जा रहे हो तो अलग प्रकार की लाइन ऑफ एडवांस है, तो वो विड्रॉ करके उनको ये देना था। लेकिन वो कह रही थी कि माँ ने एक रोज लिया अपने हाथ में, मेरे हाथ स्ट्रेच्ड हाथ पे ऐसे रखा, फिर उसको घुमाने लगी, बोलती है यू विल गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड द वर्ल्ड देन कम बैक हियर, जोर से उनके हाथ में। कहती है यही हुआ जीवन में, भागती रही मैं इधर से उधर से उधर, अब मैं फाइनली आ गई हूँ। जब वो फाइनली आई थी 2003 के करीब की बात है या 4-5 होगी, तो मुझे कहानी बता रही थी कि माँ ने कहा मैं इधर उधर जाके अंत में zigzag करके। तो ये सारे सत्य उनके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। Disclosed stood up in a gold moment's blaze, white sun steppies in the pathless infinite. वैसे तो भगवान तो कोई रास्ता नहीं, सर्वत्र है वो, लेकिन फिर भी कौन सा मार्ग लेना चाहिए, कौन सा पथ जो हमको जॉय की तरफ ले जाएगा, आनंद की तरफ, वो सारे एक क्षण में अशुपति के सामने प्रकट हो रहे हैं। तभी तो वो दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने कितना रोक के रखा, उनके मन में ये ख्याल आता था कि नहीं नहीं मुझे लगता है मैं यहाँ से चला जाऊँ तो अच्छा रहेगा, माँ भी नहीं चाहती है कि मैं यहाँ रहूँ, उनके अपने जो मनोभाव होते थे वो प्रोजेक्ट कर देते थे। तो शेरविंद ने कहा कि इसने कहा ना माँ चाहती है तुम यहाँ से जाओ ना मैं चाहता हूँ, हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि तुम यहाँ ही रहो, यही तुम्हारी नियति है। लेकिन अब देखिए वही है सोही, जो अल्टीमेटली गए, जाने के बाद जो एडमिट भी किया उन्होंने, जो दुख होता है, बरिंदा का भी यही हाल हुआ जाने के बाद, जो दुख हुआ अनिल बरन का भी यही हुआ। इसलिए भगवान को ठीक पता है आपके अंदर इच हो रहा होगा शायद मैं जाऊं तो बेटर है, जाऊं तो बेटर है, लेकिन देखा हुआ है उन्होंने सब। अलोंग ए नेकेड कर्व इन बोर्नलेस सेल्फ द पॉइंट्स दैट रन थ्रू द क्लोज्ड हार्ट ऑफ थिंग्स shadowed the indeterminable line that carries the everlasting through the years. क्या लाइन पंक्तियां है अद्भुत, indeterminable line, जैसे आकाश में होता है ना, किधर से जाया जाएगा मालूम नहीं है, indeterminate line, लेकिन किधर से जाएंगे everlasting, भगवान कौन सा मार्ग लेने वाले हैं सृष्टि के लिए, संसार के लिए, प्रलय होगा या नव सृष्टि होगी, युद्ध होगा या संधि होगी, ये सब पॉइंट्स उनको स्पष्ट हो गए, वो अदरवाइज क्लियर नहीं, क्योंकि वो तो पाथलेस है। तो सारी चीजें अशुपति के सामने स्पष्ट हो रही थी। अब आगे क्या स्पष्ट हो रहा था, ये सृष्टि जो बनी है वो माया एक शब्द है, कॉस्मिक माइंड, माइंड क्या करता है हर चीज को डिवाइड करके देखता है। और इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, क्या ये सच है कि हम सब अलग अलग हैं, हम थोड़ा सा पीछे स्टेप करके देखें तो लगेगा नहीं, इवन फिजिकली ये नहीं है, कंटिन्यूटी है। अगर आप एटमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो हम सब के शरीर से, श्वास से कितने सारे एटम्स निकल रहे हैं, दूसरों के आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है जा रही है, मिंगल हो रही है, अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब कुछ एक अच्छा खिचड़ी बन रही है, ये इनर ट्रूथ है। लेकिन माइंड क्या करता है, वो ऐसे नहीं देख सकता, ऐसे देखेगा तो डिसओरिएंट हो जाएगा। तो कैसे करता है कि ये अलग है वो अलग है, कुछ भी डिस्क्राइब करना है तो वो सब चीज़ों को अलग अलग करके। तो ये जो पावर है माइंड की, जो चीज़ों को अनंत है, जो उसको सीमित करके, जो लिमिटलेस है उसको सीमित करके, कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन एक व्यक्ति में एक नाम रूप में सीमित किया हुआ है, दूसरे में दूसरे प्रकार से सीमित किया हुआ है। तो ये जो पावर है इसको कॉस्मिक माइंड कहते हैं, और वो मैजिक है। मैजिक इसलिए है क्योंकि कैसे जो एक ही सच है वो इतने रूप में कैसे हम सबको परिलक्षित होता है या उद्भासित होता है। और इसका एक उदाहरण जो लोग देते हैं कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वैसे, ये मुझे बहुत मज़ेदार भी लगता है, अब तो नहीं देता हूँ लेकिन जब भी मैं रात को सी शोर पे चला हूँ तो मुझे ये बहुत ही अद्भुत लगता है, शायद आपने नोटिस किया होगा। आप मान लीजिए पॉइंट ए पर खड़े हो जहाँ से बीच रोड स्टार्ट होती है, तो आप क्या देखते हो, चंद्रमा है और नीचे झिलमिल झिलमिल, और वहाँ पर एक पाथ दिखता है ना, पथ दिखता है प्रकाश का। आप अंत तक चले जाइए वही दृश्य दिखेगा, बहुत अद्भुत लगता, मुझे तो बड़ा वंडर से भर देता है कि जितने लोग उतने पथ, हालांकि एक ही पथ एक ही पथ है, वही प्रकाश है, यानी कि सबके लिए अलग अलग प्रकाश आ रहा है। ये कैसे होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश तो पूरे ओशन पर आ रहा है लेकिन आपको वो दृष्टि की सीमा आ जाती है। कैसे आती है ये आप देखिए, आप उतना देखेंगे ना उसके बाद आगे का समुद्र देखें तो वो वहां पर धुंधला है, पर लॉजिकली उसका प्रकाश तो ऐसे नहीं गिर रहा ना कि ऐसे एक्चुअल रेज गिर रही है, तो सारे समुद्र पे गिर रहा है। दिस इज वन एग्जाम्पल, और वो प्रतीति इतनी पावरफुल होती है कि आपको यही लगता है कि उधर का जो है वो अंधकार में डूबा है, आप जाइए उधर भी वही प्रकाश है। ये तो आई यूज टू जस्ट फ्रीक आउट ऑन दिस विजन, और नीचे क्या हो रहा है, वही प्रकाश अलग अलग ढंग से झिलमिल 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 कर रहा है। तो उसी प्रकार का आभास, एक ही चंद्रमा, एक ही सत्य, सूर्य को ले लें चंद्रमा को ले लें, एक ही सत्य है जो अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है, और हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये मेरा खास है लेकिन माता जी के साथ भी ऐसे ही होता है लोगों को कि माँ मेरी खास है। कई बार पुराने समय के साधकों को ये भ्रांति हो जाती है कि माँ हमारी, एक बार किसी ने बोला भी था कि जब माँ फिजिकल बॉडी में थी तो कहना पड़ा कि आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़, हमको कभी लगा ही नहीं कि वो है। नहीं, इट वॉज वेरी स्पेशल विद अस, आई सेड बट वी फील द सेम एंड सो मेनी डिवोटीज आउटसाइड फील द सेम। ये सच है, मैं तो कितने लोगों से मिलता हूँ, आप उनको बोलिए कि माँ जब थी हम जब हमारे साथ जो रिलेशन था एग्जैक्टली सेम, बल्कि बेटर है, क्योंकि हमारे लिए तो ऑलवेज एक्सेसिबल है। आप चिट्ठी लिखते थे, प्रतीक्षा करते थे, हम तो जहां मर्जी वहां पर माँ है। एग्जैक्टली कि भाई आप इतना चिट्ठी लिख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा प्रतीक्षा कर रहे हो। तो अब ये जो सत्य है जहाँ हर किसी को लगता है कि उसके साथ ही ये चीज़ हो रही है, वो अलग भिन्न ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये एक प्रतीति है, लेकिन इसका एक कारण है, यहाँ वो नहीं बता रहे, यहाँ केवल वो सब स्पष्ट होने लगा अशुपति को। क्या स्पष्ट होने लगा? द मैजिशियन ऑर्डर ऑफ द कॉस्मिक माइंड। जैसे अगेन प्रिज्म से प्रकाश निकलता है तो सात रंगों में विकीर्ण हो जाता है, तो मैजिशियन ऑर्डर एक ही है लेकिन आपको अलग अलग रंगों में बिखर करके दिख रहा है। कोअर्सिंग द फ्रीडम ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिट तो अनंत है, उनको तो आप बांध नहीं सकते हो, लेकिन माया की देखो शक्ति, ये माया एक प्रतीति क्रिएट करती है, और वो इंफिनिट की मर्जी से ही, वो भगवान की ही माया है किसी मनुष्य, और इसीलिए कहा गया कि इस माया को आप नहीं पार पा सकते हो बिना भगवान की कृपा के, क्योंकि ये उन्हीं की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं यू कैनॉट क्रॉस इट, श्री अरविंद यहां तक कहते हैं यू कैनॉट स्ले माया, यू कैन स्ले मोहा। जो भ्रम आपके मन में आता है कि मैं स्पेशल हूं, मैं अलग हूं, उसको आप हटा सकते हो, मोह से आ सकते हो के, लेकिन माया फिर भी आपको कि ये आपको आपका शरीर, उसके ऊपर आपको जो ध्यान रखना है, ये नहीं सब शरीर एक है, इन प्रिंसिपल तो सब एक ही हैं क्योंकि एक ही मट्टी के बने हैं और वैसे भी एक्सटेंड कर रहे हैं एक दूसरे में। विद दिस डार्क एरे ऑफ नेचर सिंबल फैक्ट्स एंड लाइफ इंसेसेंट सिग्नल्स ऑफ इवेंट, अब देखिए पूरा स्पष्ट हो राष्ट्रपति को क्या कि ये सृष्टि कैसे ऑपरेट करती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हम लोग पंचभूत और उनके संयोजन से, अब माया क्या कर रही है, माया का मैजिक देखिए, मैजिक समझा रहे हैं श्री अरविंद, कैसे समझा रहे हैं। विद दिस डार्क एरे ऑफ नेचर सिंबल फैक्ट्स एंड लाइफ्स इनसेसेंट सिग्नल ऑफ इवेंट ट्रांसम्यूटेड चांस रेकरेंसेस इनटू लॉज, ए केओस ऑफ साइंस इनटू ए यूनिवर्स। तो अनंत हैं, उनके अंदर तो सब संभावना एक साथ है, लेकिन वो कैसे सिग्नल ऑफ इवेंट, इवेंट हर लेवल पर, हमारे लिए इवेंट होता है जो बाहर घटित हो रहा है, अंदर घटित हो रहा है, अंदर के अंदर जो घटित हो रहा है, जो नैनो लेवल पर घटित हो रहा है, वो सारे जो सिग्नल हैं, तो प्रकृति क्या करती है, एक पैटर्न बना देती है उनसे बार बार। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है तो दोबारा वही कृत्य करने का मन करता है, दोबारा करता है तो तिबारा चौबारा, एल्कोहल की आदत ऐसी पड़ती है ना। अब उसको बाद में वो क्या कहता है, भाई मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं, लॉ बना दिया। लेकिन वो लॉ नहीं है, वो हैबिट है। नेचर में लॉ कोई भी चीज नहीं है, हैबिट है। और इसके बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण हैं कि कैसे कोई चीज की हैबिट बन जाती है। कर्म की जो ग्रूव्स कहते हैं वो यही है, हैबिट है। सोच किस दिशा में जाएगी, ये हैबिट है। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं नेचर क्रिएट करता है, उसमें फिर बंध जाता है जीव, और वो कहता है ये तो नियम है सृष्टि का कि जो जिएगा, पैदा हुआ है वो मरेगा, ये तो कोरोना है, ये तो चला गया, इसका SPO2 हो गया इतना, ये कुछ नहीं है, ये सब हैबिट्स हैं। यहाँ तक माँ कहती है इवन डेथ इज ए हैबिट, बीमारी कि मैं बीमार होऊंगा क्यों, ये वायरस चल रहा है। अब ये पैटर्न बना हुआ है शरीर के अंदर, वो रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वायरस की बात हो रही है, शरीर कहते हैं वो एक सजेशन आएगा। देखिए मैकेनिज्म क्या है नेचर की, धड़ाक से एक सजेशन है, अरे कोरोना है, उसके साथ में क्या आएगा, डर आएगा, ओ माय गॉड, पता नहीं अभी तो मेरा ये काम बाकी है अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, इटली नहीं गया, पेरिस नहीं गया वो आया एक सजेशन की हाय में तो जल्दी। अब सजेशन आया डर के साथ, पहले एक सजेशन आया कि ये वायरस, फिर आपको डर लगा, अब डर लगा, अब लोग भी हैं कोरोना के बहुत सारे गुप्तचर, वो और आपके मन में डर, हाँ ये तो पक्का कोरोना है, जल्दी से कर लो। अब ये क्या हुआ, वो पैटर्न में, कौन सा पैटर्न है, उसमें चला गया कि यू विल फॉल सिक एंड पॉसिबली डाई। नेचर ने बहुत सारे पैटर्न बनाए हुए हैं। अब मान लीजिए आपके अंदर ये फेथ आया कि बट डिवाइन इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग, तो प्रकृति का वो भी पथ है, एक दूसरा पैटर्न है जिसमें वो आएगा, टच करके आपको चला जाएगा। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, सिग्नल ऑफ इवेंट, और उसको हम पिकअप करके उसके लाइन पर, अब कौन सी लाइन हम चूज करेंगे वहां पर हमारी चॉइस होती है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जिसमें जीव बंधा हुआ है, और उसको वो कहता है ये लॉ है, लेकिन लॉ नहीं है वास्तव में। एक कई लोग ये भी कहते हैं इस महीने में मैं पक्का बीमार पड़ूंगा। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो ये कहते थे कि हर साल इस समय मेरा एक्सीडेंट होता है और फ्रैक्चर होता है कुछ को। मैंने उनको बताया आप ऐसे मत सोचिए, माँ ने इसके बारे में कहा है कि वो फॉर्मेशन एक्ट करता है, फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि अरे वहाँ पर ना देखिए कई बार एक्सीडेंट प्रोन एरिया, बड़ा आश्चर्य है कि लिखा है आपने एक्सीडेंट प्रोन एरिया कॉन्शियस होने के लिए, लेकिन वहीं एक्सीडेंट होता है तभी आपने उसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और लोग कहते भी हैं वो केवल ये नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन वो एक फॉर्मेशन है जो ऑपरेट करता है, और ये सारे फॉर्मेशंस पूरे आपके वो परे वो क्रिएशन में एक्ट करते हैं। ये सारे आउट ऑफ द रिच वंडर्स एंड द इंट्रिकेट वॉल्स ऑफ द स्पिरिट्स डांस विद मैटर एज इट्स मास्क द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स डिजाइन ग्रू क्लियर। विश्वकर्मा की सारी कैसे उन्होंने बनाया मैजिकल इंद्रप्रस्थ द्वारका या संसार को, ये कैसे बनाया, वो सारे डिजाइंस उसके पीछे। अब ये कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ वैज्ञानिक या वो रामानुज की बात है मैथमेटिशियन, जो इन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं इंट्यूशन के द्वारा, उनके अंदर एक विशेष कृपा होती है और उस वो इंट्यूटिव सेंस को पकड़ लेते हैं कि ये ऐसे है, इसके पीछे ये मैथमेटिक्स है। और अगर आप उन मैथमेटिक इक्वेशन को देखोगे तो वो माइंड बॉगलिंग है लिटरली, लेकिन वो पकड़ते हैं पूरे उसके पीछे जो पैटर्न है, उसके पीछे जो इक्वेशन है। अब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम भी कुछ इस तरह की चीज करते हैं जो आश्चर्य होता है कि कैसे। अभी हम लोग इसमें भी हमने यूज किया ना वो आकाश तीर, क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्या सिस्टम है, ड्रोन आ रहा है, अब वो अपने आप भाप जान गया है, कैलकुलेट कर लिया उसने ये कौन सा ड्रोन है, इसकी क्या क्षमता है, इसको कैसे पियर्स करना है, क्या सब उसने कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिकली। तो वो डिसाइड करेगा आकाश तीर, इसको मिसाइल से मारना है कि इसको छोटी सी बुलेट से मारना है, अब देखिए पैटर्न को उसने पकड़ लिया सब कुछ, तो ये इसको ये ओरिजिनल मैजिक माया का ही मैजिक है। इट्स सिमेट्री ऑफ सेल्फ अरेंज्ड इफेक्ट्स मैनेज्ड इन द डीप पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोल। अब ये जो है ये वैज्ञानिक इस धरा भूमि पर पहुंच गए। माने कहा है कि देव तब कहा था जब इन्होंने एटम्स के अंदर जाके सब डिस्कवर किया था कि दे हैव एंटर्ड इनटू द ऑकल्ट डोमेन, जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुए थे। तो अभी तो कितना आगे वो चीज़ बढ़ गई है। तो देखिए संभावना कितनी अधिक पावरफुल। अब इसका एक कल्पना हम कर सकते हैं कि माया कैसे ऑपरेट करती इतनी पावरफुली। वैज्ञानिकों ने इधर से उठते हुए थोड़ा सा उनके पैटर्न को पकड़ लिया है, उसके आधार पर आप देखिए 350 किलोमीटर जाके एक मिसाइल 1 मीटर के अंदर एग्जैक्टली उस गेट को तोड़ सकती है, क्योंकि आपको सारा सब कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर वो कर सकती है। तो ये पैटर्न्स को जैसे जैसे, और आने वाले समय में लाइट और साउंड से ये चीज़ें होंगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, सर्जरी भी आप लाइट और साउंड से कर पाओगे। एक बार पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी में आप स्किन को पेनिट्रेट करके वहाँ पहुँच करके ये कर सकते हो, और वो आने वाले समय में लोग बोलेंगे अच्छा पहले डॉक्टर लोग चाकू से चीरते थे, हे भगवान कितने प्रिमिटिव थे। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ डिस्कवरिंग द वेज। शायद लाइट से क्लेंस भी करेंगे, शायद नहीं, निश्चित रूप से आपके हार्ट के ब्लॉकेज हैं तो जस्ट बाय पल्सेशन ऑफ लाइट यू कैन क्लीन इट। अभी वो शक्ति हमारे, अभी वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये संभव है, लेकिन वो उस पावर को हैंडल कैसे करना है ये नहीं जानते हैं, क्योंकि उसके जो सारी ऊर्जा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो, लेकिन आज नहीं तो कल डिस्कवर होगी, उसकी डिस्कवरी होगी। एंड द रियलिज्म ऑफ इट्स इल्यूसिव आर्ट, ऐसा कि आसमान है, इल्यूसिव आर्ट जो रियल है। आप किसी, जब पहली बार पता चला होगा, मतलब मुझे तो लगा था कि ये शून्य है, माने शून्य मतलब ये ब्लू, ये जो पहले लगता था ना ये ब्लू कलर का कुछ छत टाइप का है, तो लगता था संसार हमारा चारों तरफ एक ब्लू कलर का छत है उसमें, ये पता चलता है कि ये ब्लू कलर एक इल्यूजन है, वास्तव में वो नहीं है लेकिन वो रियल लगता है। इट इज ओनली जब आप जाओगे रियलिज्म ऑफ द आर्ट, तो है नहीं वो, तो केवल वो तो पार्टिकल्स में लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसके कारण आपको लग रहा है ये ब्लू कलर है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जब आप जाओगे तो एकदम कोल्ड वॉइड में जा रहे हो लेकिन आपको फील हो रहा है। तो दिस इज द इल्यूसिव आर्ट एंड द रियलिज्म ऑफ इट्स इल्यूसिव आर्ट, इट्स लॉजिक ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इट्स मैजिक ऑफ ए चेंजिंग इटर्निटी। सच बात है कि अगर हम कभी कभी, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब हम केवल पैटर्न्स देखें, तो अगर हम पिछले लेट्स से ये केवल चतुर्युग को देखें, चतुर्युग भी नहीं 2500-3000 साल का या 4000-5000 साल का पैटर्न देखें। कई बार लोग बोलते हैं ना ये रिलीजन इतना खतरनाक क्या होगा, अब आप जाइए 4500 साल पहले, उस समय आप कल्पना से इजिप्ट के पैलेस में चले जाइए जहाँ फराहो की पूजा हो रही है और जो रामसेस हैं वो विष्णु भगवान के राजा, उनका ही देन है। कभी उन्होंने कल्पना की होगी कि हमारा ये सारा रिलीजन जो बहुत पावरफुल था, मैं दूसरे किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल था, ऑकल्ट नॉलेज भी थी, और उनको वो वास्तव में विष्णु भगवान से इंस्पायर्ड थे, जो नाइल का जो इवन नेमिंग है ये सब, एक बार मैंने इस पर टॉक भी दिया है, वो खत्म हो जाएगा। किसी ने सोचा होगा कि हाँ रामसेस के दरबार और उनके जो गॉड्स थे, क्या नाम था उनका, ओरेस होरस जो सूर्य देवता, ये सब चले जाएंगे, यहां पिरामिड आ जाएंगे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं प्रकृति में, और ये पैटर्न्स बनते हैं। रिलीजन्स के साथ भी यही होता है। तो कई लोगों को लग रहा है ये रिलीजन कैसे खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, जब उसका डेट एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो वो यूं खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई नई चीज आनी है। इवन सनातन धर्म, आप कल्पना कीजिए कि आप 5000 वर्ष पहले वैदिक ऋषि बैठ करके किस तरह से, अब वो कैसे वो सारा विलुप्त हुआ, अर्जुन और कर्ण ये ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, ब्रह्मोस चला रहे हैं, भार्गव अस्त्र अभी वो भी आ गया है, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अब वो सब बीच में विलुप्त हो जाता है और अब नए ढंग से डिस्कवर हो रहा है। तो ये प्रकृति की क्या पावर है उसके अंदर। तो जब हम सिविलाइजेशंस को ऐसे देखते हैं ना, राइज एंड फॉल, तब लगता है मनुष्य अपने को कुछ ज्यादा ही समझता है। हाँ, अगर स्पिरिचुअल सेल्फ लो तभी है उसमें जो भी है, वरना क्या है। सो इट्स मैजिक ऑफ ए चेंजिंग इटर्निटी, वही इटर्निटी है, उस समय जो लोग थे वही वो पूजा करते थे उन चीजों की, और वो कहते थे यही भगवान का द्वार है, उनके अनुभव भी होते थे भगवान के उस तरीके से। धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोगों के अपने स्क्रिप्चर्स को अगर देखें, एक समय जब वैदिक काल में इंद्र हैं तो वो तो एकदम ओवर माइंड के गॉडेड हैं, उनको क्या क्या कहा गया है, बुल, लाइक बुल पावर उनकी, सहस्राक्ष ग्लोबल। अब पुराणों के समय में इंद्र भगवान की भी ये अवस्था होगी, उन्होंने स्वयं नहीं सोचा होगा, काल की गति देखिए। ट्रोजन वार के समय का देखें, उनकी जो व्यवस्था थी, परंपराएं थी, जिस कई बार लोग बोलते परंपरा, तो कितनी भारत से मिलती जुलती परंपराएं थी, जिसमें वो आंखों के ऊपर ये सब रख के जलाते थे, अग्नि दाह संस्कार करते थे, और उसको नहीं करना बहुत बुरा माना जाता था शव के साथ। पर्शियन एम्पायर देख लीजिए, ईरान की पूर्व सभ्यता, वहां पर वो जो नोबिल होते थे उनको बोलते थे आर्य, उनका उत्तम शब्द था आर्य, और दो तरह के मनुष्य बस जानते थे, आर्य और अनार्य, ठीक हमारे जैसे। आर्य वो थे जो हाई ट्रुथ को मानते थे, अग्नि की पूजा करते थे, सारा उस समय जो पारसी जिनको कहा गया ना, फारस के लोग। अब पारसी कितने बचे हैं देखिए पूरे संसार में, गिने चुने आकर के भारतवर्ष में ज्यादातर सेटल हुए, अच्छे लोग हैं, पर वो देखिए। और ईरान में क्या हो गया, मतलब अगर कोई उस समय व्यक्ति सो जाता और मॉडर्न ईरान में जागता अचानक, तो क्या कहता है, क्या हो गया है, कौन है ये लोग। तो ऐसे ही प्रकृति की पावर है, यह है माया का खेल, जब वो डिसाइड करती है, लेकिन वो एक्ट करती है अंडर दी डिवाइन इंपल्शन। महाभारत के समय क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि भीष्म द्रोण जैसे योद्धा एकदम ऐसे चले जाएंगे, इनका कोई लोग डाउट करेंगे, ये होते थे कि नहीं होते थे, रियल थे कि मिथ थे। ये देखिए पावर ऑफ द माया। लेकिन ये माया को ये नहीं कि ये व्यर्थ का, वो एक अलग विषय है, इसके पीछे एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस काम कर रही है जो मार्च ऑफ मैनकाइंड मनुष्य को आगे ले जा रही है इन सब के माध्यम से। और यह हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आगे ले जा रही है। जैसे आज किसी ने एक प्रश्न किया बाद में इसको सब्जेक्ट के रूप में, कि हमारा देखियो आज हम लोग इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जैसे एंटी कन्वर्शन लॉ की जरूरत नहीं है, हम लोग सनातन सभ्यता में तो कभी हमने ये सब चीज़ें नहीं करी। तो मैंने एक छोटा सा रिप्लाई किया, हाँ क्योंकि उस समय मुस्लिम्स नहीं थे, तो हमने आपको कोई वो चैलेंजेस अलग थे, अब चैलेंजेस अलग हैं, तो यू हैव टू रिकनसाइल विद द न्यू चैलेंजेस। जब ने राम जी के समय में अलग चैलेंजेस थे, अब जब कृष्ण जी आते हैं तो चैलेंजेस बिल्कुल भिन्न होते हैं, जब श्री अरविंद हैं तो चैलेंजेस एकदम अलग हो गए। तो वो जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं, वही सत्य जो इटर्निटी है अपने को नए रूप में प्रकट करती है। अगर उस समय इस तरह के लोग होते तो आप ये नहीं बोलते कि हिंदू और मुसलमान, आप यही बोलते अनार्य हैं, अधर्मी हैं, ये देखो जाकर के लोगों के वस्त्र ऐसे मारते हैं पहचान पूछ के, कैसे राक्षस हैं, इन राक्षसों को भूभार हरण के लिए हटा देना चाहिए, ये शब्द यूज करते हैं। वो ये नहीं बोलते, वहां एंटी कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं थी, वो कहते कि ये राक्षसी सभ्यता के लोग हैं, इनको तो ये शहर में नहीं आए, अपने गुफाओं में छिपे रहे, लेकिन ये बाहर आएंगे तो इनका जीवन, सबका जीवन खराब करेंगे, यही कहते और कुछ नहीं कहते, सच बात है। लेकिन तब इंस्टेंट जस्टिस थी, कोई यूएनओ नहीं था, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। तो जैसे जैसे सभ्यताएं बदलती हैं वैसे वैसे मनुष्य भी एक अपग्रेड होता है, इवॉल्व होता है, नए चैलेंजेस के साथ उसको नए हल ढूंढने पड़ते हैं, जैसे आज की जनरेशन के साथ. ए ग्लिम्स वॉज कॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवर अननोन. वो देख रहे हैं अब अशुपति जो कभी नहीं मालूम थी. अब शेरविन तो ऐसा लिख गया कि शायद जैसे पहले मार्स पर इवोल्यूशन हुआ था, हो सकता है आने वाले समय में वो वीनस में हो. अब सुन के तो बड़ा आनंद भी आता है. वीनस तो वैसे भी शुक्र ग्रह प्रेम की देवी है. अभी तो गर्म है, बहुत गर्म है, आप सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ को. लेकिन अगर सूरज, कई बार लोग बोलते हैं सूरज ठंडा होगा, तो सूरज जब मध्यम होगा तो वीनस अनुकूल होगा जीवन के. एवरीथिंग इज पॉसिबल. अब ये क्रिएटिविटी, उस समय अगर कोई बोलेगा कि अच्छा एक धरती होती थी उस पर ऐसे लोग थे, तो वहां पर एकदम सभ्यता कहीं और होगी. इससे हम सबके अंदर विशालता आती है. पढ़ के देखिए कितनी विशालता आती है, कितनी चीजें हैं जो अननोन है. हम एक दृश्य में चिपके रहते हैं. द लेटर्स स्टूड आउट ऑफ द अनमूविंग वर्ड इन द इम्यूटेबल नेमलेस ओरिजिन वॉज सीन इमर्जिंग एज फ्रॉम फैदमलेस सीज द ट्रेल ऑफ द आइडियाज दैट मेड द वर्ल्ड. अनमूविंग वर्ड ओंकार नाद, ओरिजिनल नाद, स्पंदन जिसे सारे निकलते हैं ना. ये संस्कृत की तो यही मानता है कि वो सारे जो आप संभव है ना लेटर्स, जो नेजल्स, लेबियल्स, पैलेटल, जो संभव है साउंड्स, वही लेटर्स हैं. अगर आप ध्यान से देखें संस्कृत में जितने भी लेटर्स हैं, तो हिंदी में भी वही है, वो सब जो जितने प्रकार की आप ध्वनि निकाल सकते हो अपने मुख से अलग अलग कॉम्बिनेशन में, वो ध्वनियां हैं. हम कहते हैं कि ये लेटर है क ख ग ग या च छ ज झ. देखिए सारा प फ ब भ म य र ल व श. नहीं, दैट्स ट्रू. इट्स द साउंड्स. आपने उसको मीनिंग दे दिया, लेकिन ओरिजिनल साउंड कौन सा है? नाद. हमारे यहाँ इसीलिए इसको दूसरे ढंग से भी बताया गया बहुत सुंदर. शिव जी ने दाहिने हाथ से जब डमरू बजाया तो उसमें से जो निकला वो कोई पता नहीं, किसी को याद होगा कि नहीं, बड़ा मज़ेदार है वो. यू रिमेम्बर दी होल थिंग? 14 जो साउंड्स निकलते हैं सीट साउंड्स, उससे संस्कृत का जन्म होता है. डमरू से तमिल, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से संस्कृत. झगड़े ही नहीं कर, शिव जी में एक हैं गडम डडम कुछ ऐसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सीट साउंड्स उससे. अब देखिए कैसे ये चीजें उनसे, अब वर्ड्स कितने निकल गए हैं. एक है ओम, उसमें से सब कुछ निकल गया. इतने शब्द की अलग अलग भाषाओं में, सबके अलग अलग भिन्न, कई एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ, लेकिन ओरिजिन तो, ये तो माया का मैजिक है कि उन्हीं In the immutable, nameless origin was seen emerging as from fathomless sea the trail of the ideas that made the world. ये तो हमारे शास्त्र में ऐसे तपा तपा तपा, ये पहला जो वर्ड सुनते हैं ब्रह्मा जी जब सृष्टि के वाटर्स में कुछ नहीं, तो पहला जो उनको सुनाई देता है वह तपा 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 तप. फिर और भी जो शब्द जैसे जैसे निकलते हैं आइडियाज. एक को हम बहु श्याम, लेकिन वो तो लंबा सेंटेंस हो गया. वो आइडिया जो होते हैं एक शब्द के अंदर सब कंटेंट होता है, जैसे राम उसके अंदर सब रमा हुआ है, तो वो आइडियाज मा ऑल इंक्लूसिव. सो वो जो निकलते हैं आइडिया जिनसे पूरी सृष्टि बाद में पूरी विकसित होती है आइडियाज. एंड सोन इन द ब्लैक अर्थ ऑफ नेचर स्ट्रैंड्स The seed of the spirit's blind and huge desire from which the tree of cosmos was conceived and spread its magic arms through a dream of space. वह बीज जो अब desire यहाँ पे कोई naturally spirit के अंदर कामना नहीं है, but desire यहाँ पे वो जो stir है, वो जो स्पंदन है जो उसको आंदोलित करता है, शोप पैदा करता है. द वर्ड इज शोप. वो तो उस अवस्था में है नॉन बीइंग. शोप पैदा करता है, क्रिएट करने के लिए स्टर होती है, उसको आनंद है वो. तो वो सब अब अशुपति देख रहे हैं कि वो कैसे इस सृष्टि के अंदर वो बीज बोया गया, एको हम बहुश्याम, और फिर वो बीज जैसे एक वृक्ष निकलता है एक बीज से, तो एक ओरिजिनल आइडिया वृक्ष के समान फैलता गया और सृष्टि बन गई विस्तार उस एक शब्द से जो बोया गया है। सावित्री में बाद में भी एक लाइन आती है ना एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर में, दिस वॉज ए सीड सोन इन एंडलेस टाइम, ए लाइट इज सीन, ए वर्ड इज स्पोकन एंड ए लाइट इज सीन। वो जो शब्द है फिर वो पूरा सृष्टि के अंदर फैलता है। इमेंस रियालिटी इज टू कॉन ए शेप, और उसके अंदर से सारे देवी देवता सब प्रकट होने लगते हैं। देयर लुकड आउट फ्रॉम द शेडो ऑफ द अननोन द बॉडीलेस नेमलेसनेस दैट सॉ गॉड बॉर्न, बॉर्न किस सेंस में नाम रूप। अब वह जो अरूप है अनाम है, अब वो अनेकों अनेकों नाम रूप में आ रहा है जिनको हम लोग देवी देवता के नाम से जानते हैं, वो सब अब अशुपति को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही तो है श्री अरविंद के अनुभव, तभी तो वो लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, कोई एनालाइज करके नहीं बता रहे हैं कि इसका मतलब ये सब उन्होंने देखा, ये अशुपति के अनुभव है। एंड ट्राइज टू गेन फ्रॉम द मॉर्टल्स माइंड एंड सोल ए डेथलेस बॉडी एंड ए डिवाइन नेम। तो पहले देखिए कितनी सुंदर बात है कि बॉडीलेस नेमलेस अरूप अनाम, अब वही किया एकमात्र सत्य नहीं, वो चाहता है कि नाम रूप में अपने आप को प्रकट करना। तो कैसे वो प्रकट करता है कि वो अपने आप को, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पूरा हुआ है, द बॉडीलेस नेमलेसनेस दैट सॉ गॉड बॉर्न, कैसे प्रकट करेगा, अब उनको नाम कौन देगा, रूप कौन देगा, मॉर्टल माइंड, आदित्य सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। अभी क्या कर रहा है ह्यूमन माइंड, उसको डिफाइन कर रहा है अलग 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 एस्पेक्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे आप एक एक एस्पेक्ट को, जैसे नव दुर्गा शी इज वन, बट ह्यूमन माइंड अलग अलग एस्पेक्ट्स को प्रकट कर रहा है। सो यहां उसका वर्णन है, एंड ट्राइज टू गेन, उनकी ही इच्छा से यह हो रहा है, फ्रॉम द मॉर्टल्स माइंड एंड सोल ए डेथलेस बॉडी एंड ए डिवाइन नेम। प्रत्येक जो गॉड गॉडेस ये डेथलेस हैं अपने आप में, और उन सबके अपने अपने यूनिक नाम हैं, और ये किस लिए, ताकि उससे स्वयं का ही विस्तार में परिचय, मतलब अगर भगवान को अपना परिचय देना हो या जाना, सारी सृष्टि उनका परिचय है, तो परिचय कैसे देंगे, तो ऐसे परिचय दे रहे हैं प्रकृति के अंदर, धीरे 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 डम्ब नेचर उसके अंदर से निकल रहा है, जड़ प्रकृति के अंदर से अंत में मनुष्य निकल रहा है, मनुष्य के अंदर नाम रूप और नाम की संभावना, इसीलिए स्पीच इतनी पावरफुल चीज़ है, और उसके साथ में वो नाम देना प्रारंभ करते हैं भगवान को। आप कितने भी नाम दे लीजिए आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं। एक समय मैं तो ऐसे सोचता था कि कोई ऐसा नाम है क्या संसार में, हिंदू नाम की बात कर रहा हूँ, कि जिसको आप भगवान से जोड़ ना सकें, आप हो गई नहीं, अब तो हो गया टीटू पीटू पता नहीं क्या चंटू मंटू, लेकिन आप कोई भी नाम को अगर पिकअप करिए, इवन जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, जैसे रावण कोई नहीं रखता है, लेकिन रावण जिसके इतनी उसकी जो चीख है या चीतकार है इतना सशक्त है कि उससे मतलब धरती के कान वो हो जाए, बहरे हो जाए, तो आप हर चीज के पीछे एक शक्ति, शक्ति का आभास, तो वो सृष्टि के अंदर से अपना ही परिचय भगवान, हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के माध्यम से देते हैं, या अपना ही परिचय, अच्छा मैं ये, मुझे तुम ऐसे भी जानते हो, लेकिन अपने आप में वो अरूप है, अरूप से स्वरूप बनता है उनका सच्चिदानंद, स्वरूप से उनके अनेकों अनेकों रूप बनते हैं। The immobile lips, अब उन सच्चिदानंद ब्रह्म का एक भगवान का थोड़ा सा वर्णन है, हम लोग बस चार पांच पंक्तियां पढ़ेंगे। द इमोबाइल लिप्स द ग्रेट सरियल विंग्स, ये वर्णन परस्यूट ऑफ द अनोएबल में भी आएगा। द इमोबाइल लिप्स द ग्रेट सरियल विंग्स द विसाज, विसाज मतलब चेहरा, मास्क्ड बाई सुपर कॉन्शियंट स्लीप, वो कौन सा चेहरा है जो छिपा हुआ है उस घोर प्रज्ञा में, उस ज्योतिर्प्रकाश में. The eyes with their closed lids that see all things appeared of the architect who builds in trance. हमारे यहाँ जब किसी ने वो थे ना सुधीर कुमार सरकार के रेमिनिसेंस से जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने पूछा कि ये सब जो है हम लोग सुनते हैं विष्णु भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, ये सब तो मतलब इमेज है ना, बोलते नहीं ये सत्य है, तुम इसका दर्शन कर सकते हो. बाद में लिखते भी हैं. हम लोगों को लगता है कि किसी ने एक इमेज के रूप में बनाया है, लेकिन जो ऋषि हैं उन्होंने दर्शन किया. क्या दर्शन किया? आप जब ऋषि डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ओरिजिनल बता रहे हैं, हम लोगों ने तो फिर बाद में अपने हिसाब से मॉडिफाई किया. ओरिजिनल देखिए दर्शन. The immobile lips, the great surreal wings. अब वो wings क्या है? उनका विस्तार, जिसने पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेटा हुआ है. यहाँ wings कोई हम पंख से ना, कल्पना से पंख बना देते हैं पशु का. Wings क्या होते हैं? Literally इसका मतलब होता है किसी को अपनी to put somebody under your wings. मतलब वो wings वह विस्तार जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है. तो वो है विष्णु भगवान. द ग्रेट सरियल विंग्स, द विसाज मास्ट बाई सुपर कॉन्शियंट स्लीप. क्षीर सागर की महा प्रज्ञा. क्षीर सागर इज द ओशियन ऑफ लाइट मिल्क. दैट्स हाउ इट इज. मिल्क इज नॉलेज. द आईज विद देयर क्लोज्ड लिड्स दैट सी ऑल थिंग्स अपीयर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट बिल्ड्स इन ट्रांस. और यही देखिए ये सीक्वेंस भी यही है. जब हम पुराणों को पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कि विष्णु भगवान का दिखते हैं. अब फिर कौन आता है जब उनके अंदर ये इंपल्शन होता है क्रिएट का? एग्जैक्ट इमेज हम वी नीड नॉट, बट एज ए स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. उनके अंदर से नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. उनको बनाना है, लेकिन प्रेरणा कहां से आ रही है? वो निकल कहां से रहे विष्णु भगवान के अंदर? फिर दोनों अपने ओरिजिन के बारे में ढूंढते हैं. तो ओरिजिन क्या है? दैट ज्योतिर्लिंग, दैट नॉट ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्तंभ, द पिलर ऑफ लाइट, जहां से वो निकले हैं. सुपर कॉन्शियंट स्लीप, जिसको शिव भी कहते हैं. तो वो उस परम प्रकाश के अंदर विष्णु भगवान सोए हुए हैं और फिर उनके अंदर से ब्रह्मा जी निकलते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये सब कुछ अशुपति अब अपनी आंखों से देख रहे हैं. तो छिपा क्या है? देखिए ये हद तक इंट्यूटिव नॉलेज ले जाती है. अभी इंट्यूशन पर ही है उनका. आपको ये सब चीजों को किसी ना किसी रूप में, छवि के रूप में, माइंड के अंदर छवि के रूप में, या केवल स्वतः स्फूर्त ज्ञान के रूप में वो प्रकट करने लगती है. जय मां.